आप SBS उर्दू के साथ हैं।
हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, हमसे जमाना खुद है, जमाने से हम नहीं। अगर ख्वातीन की राह में बेजा रुकावटें ना डाली जाएं, तो वो बड़े से बड़ा मार्का सर कर सकती हैं। इसका सबूत हमें मुख्तलिफ शोबा जात में काम करने वाली ख्वातीन की कामयाबियों से बखूबी मिल जाता है। इसलिए आज हम आपकी मुलाकात गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाली एक ऐसी पावर वुमन से करवाएंगे जिन्होंने हाल ही में मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में बैनुल अक्वामी कामयाबी हासिल की है और पूरी दुनिया में ख्वातीन की जिस्मानी और जहनी ताकत की पहचान बन गई हैं। मैं बात कर रही हूँ अनीता करीम की, जिन्होंने बैंकॉक के मोतबर लुम्बिनी बॉक्सिंग स्टेडियम में ऑस्ट्रेलवी हरीफ को 3 राउंड्स में शिकस्त देकर इस खतरनाक खेल में बेमिसाल कामयाबी और आलमी शोहरत हासिल की है। आज की मुलाकात में आप इनके भाई, कोच, गाइड और दोस्त उलूमी करीम से भी मिलेंगे, जो खुद भी एक मार्शल आर्टिस्ट हैं और पाकिस्तान की आलमी सतह पर नुमाइंदगी करते रहे हैं। अनीता, मेरा आपसे सबसे पहला सवाल ये है कि आप आज तक कितने मुकाबलों में हिस्सा ले चुकी हैं और आपका सबसे यादगार मुकाबला कौन सा है?
अभी तक मेरे 5 फाइट हुए हैं और यादगार जो है ये रिसेंटली वाला। जी, ये सारे मेरे इंटरनेशनली फाइट्स हुए हैं। मेरे आई थिंक 3 मेरे सिंगापुर में हुए हैं, वन वॉरियर सीरीज में, बाकी 2 लुम्बिनी में हुए हैं।
इस मुकाबले की सबसे यादगार बात क्या थी?
क्योंकि जो मेरी टीममेट है स्पेशली, लाइक उसने मुझे बोला था कि नी मार के आना वरना मैं तुम्हें यहाँ नहीं मारूंगी। मैंने कोशिश की वहां पर नहीं मारने की और इसलिए भी मुझे अच्छा लगता, और दूसरा मेरे पंचेस अच्छे हुए इसलिए भी।
हर फाइट से पहले किस प्रोसेस से आप गुजरती हैं अपने आप को एक फाइट के लिए प्रिपेयर करने के लिए?
जब फाइट डिसाइड होती है तो हमारी फाइट कैंप स्टार्ट होती है, और फाइट कैंप में स्पेशली वो चीज़ें हम लोग ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं जिस चीज़ में हमारे ओपोनेंट अच्छे होते हैं, तो इस हिसाब से हमारी ट्रेनिंग भी होती है और गेम प्लान भी उसी हिसाब से बनाते हैं, और फाइट भी हम कोशिश करते हैं जिस तरह से हमारी ट्रेनिंग हुई उसी तरह ही फाइट हम परफॉर्म कर सकें।
आप हम कह रही हैं, हम से आपकी क्या मुराद है?
लाइक हमारे सारे जो टीममेट्स होते हैं हम मिलके ट्रेनिंग करते हैं इसलिए।
लेकिन फाइट हर पार्टिसिपेंट की अलग ओपोनेंट के साथ होती है।
जी, लेकिन टीम सबसे पहले आती है। एक टीम ही, जब टीम एक साथ हो तो बंदा आगे जा सकता, अकेले बंदा आगे नहीं जा सकता।
मैं आपका मुकाबला देख रही थी, पहला राउंड गुजरा तो आपकी हरीफ जो थी वो खूनो खून हो गई और आप बिल्कुल ठीक। फिर दूसरा राउंड गुजरा, उसमें वो फिर से खूनो खून हो गई और आपके चेहरे पे कोई स्क्रैच नहीं था। फिर तीसरा राउंड गुजरा और आप फिर बिल्कुल ठीक और वो खूनो खून। तो आप अपने बचाव के लिए क्या टेक्निक इस्तेमाल कर रही थी?
हमारी यही कोशिश होती है फाइट में कि दूसरे को डैमेज ज़्यादा करें और खुद अपने आप को बचाएं, तो सेम वही था। जाहिर है हम फाइट करने गए थे वहां पर, मैं फाइट करने गई थी तो आगे वाली मेरी ओपोनेंट वो भी मुझे मारने ही आई थी, तो हम मेरी जो जिस तरह से ट्रेनिंग हुई थी मैं वही वो बॉक्सर भी है और रेसलर भी, तो मैं उस हिसाब से अपने हेड मूवमेंट सारा कुछ कर रही थी, लेकिन उसको ज्यादा पंच पड़े तो दैट्स गुड।
आपका पसंदीदा स्टाइल और पोज या स्ट्राइक क्या है फाइट में?
स्ट्राइकिंग।
आपका लेफ्ट हैंड ज्यादा स्ट्रांग है या राइट हैंड?
ऑब्वियसली मैं लेफ्ट हैंडेड हूँ तो मेरा ज्यादा पावरफुल हैंड लेफ्ट ही है।
मारना और फिर मार खाना बड़ी हिम्मत और हौसले की बात है, तो आपने अपने अंदर ये हौसला कैसे पैदा किया है?
मेरे भाई जिस तरह से मुझे बचपन से लड़कों की तरह ट्रीट किया, तो शायद वहां से मेरे अंदर इतना जज्बा था कि मैं भी अपने भाइयों की तरह बन सकती हूँ, मैं भी अपने भाइयों की तरह अकेले बाहर जा सकती हूँ, शायद वहां से मेरी ग्रूमिंग हुई है।
आप कितनी देर ट्रेनिंग करती हैं?
हमारी 3 क्लासेस होती हैं, सुबह, दिन को और शाम को, तो ये हमारा रेगुलरली शेड्यूल है। सिर्फ संडे हमें ऑफ मिलता है।
और फिर संडे को आप क्या करती हैं?
संडे को बस चिल मारते हैं, मैं और भैया जी कभी कभी बाहर जाते हैं, बीच पर बैठते हैं, और कभी लेफ्ट राइट हमें कहीं खाने पीने का कोई दिल किया तो हाँ, मैं और भैया जी बाहर जाके खाना पीना भी करते हैं, और कोशिश करते हैं कि हम मंडे से फिर अपनी बॉडी को रिकवर कर ले तो फिर रेस्ट भी करते हैं।
आपके MMA फाइट के अलावा और क्या मशगले हैं?
एमएमए फाइट के अलावा मेरे इतने खास नहीं है, क्योंकि हमारी सारे फोकस सिर्फ ट्रेनिंग पे ही होती है। और दूसरा, मुझे खाना बनाने का बड़ा शौक है,
अच्छा,
खाने बनाती रहती हूँ।
और आपकी फेवरेट डिश क्या है?
ज्यादातर मुझे हुंजा के डिश मुझे ज्यादा अच्छे लगते हैं, जो हमारे लोकल डिश है वो मुझे ज्यादा अच्छे लगते हैं। और दूसरा आपके तो गोश्त मुझे ज्यादा अच्छा लगता है, और बिरयानी।
जो लड़कियां एमएमए फाइटर प्रोफेशनली बनना चाहती हैं, उनको और उनके घर वालों को किन चीजों के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए?
देखिए, जब मैंने मिक्स मार्शल आर्ट स्टार्ट किया था, उसी मुझे अपने फैमिली का और मेरे भाइयों का सपोर्ट रहा, इतना मुझे मसले नहीं हुए। लेकिन हाँ, मुझे काफी मसले भी हुए, लेकिन इतना नहीं, क्योंकि मेरे भाई मेरे साथ खड़े थे। जो कोई फाइटर बनना चाह रहा है, मेरी मतलब यही उनके लिए मैसेज होगा कि आप अपने पेरेंट्स उनको सपोर्ट करें। और जो फाइटर बनना चाह रहे हैं, वो कभी भी जब ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं, अमूमन ज्यादातर छोड़ के चले जाते हैं। उनके लिए ऐसा लगता है कि टफ है, मुश्किल है, तो हर चीज मुश्किल होती है, कोई चीज आसान नहीं होती है। तो फर्स्ट मेरे लिए भी मुश्किल था, इतना आसान नहीं था। आहिस्ता आहिस्ता मैंने ट्रेनिंग की, और फिर मुझे जब एमएमए समझ में आने लगा, थोड़ी बहुत मुझे आसान भी लग रही, लेकिन उसकी ट्रेनिंग हमारी सख्त है। तो उनके लिए भी यही है कि ट्रेनिंग सख्त होगी, जो फाइटर बनना चाह रहे हैं। आप अगर आपने एक दफा ठान लिया कि आप फाइटर बनना चाह रहे हैं, तो आप बन के दिखाएं, बीच रास्ते में बस इसको छोड़े ना।
आपका हीलिंग प्रोसेस क्या है एक फाइट के बाद?
फाइट के बाद डिपेंड करता है कि इंजरी किस तरह से हुई है, क्या क्या इंजरीज हुई हैं, उस हिसाब से फिर हमारी रिकवरी भी होती है। अगर हल्का हल्के हल्के फुल्के कोई इंजरी है हुई है, तो हम रेस्ट करते हैं, अच्छा खाते हैं पीते हैं, और अपने सप्लीमेंट्स को से यूज करते हैं,
आप अपनी सेहत का किस तरह ख्याल रखती हैं?
और ज्यादा ख्याल रखते हैं, क्योंकि जैसे टाइम पे खाना पीना सोना, तो इस लिहाज से हम मैं अपनी ज्यादा ख्याल रखती हूँ।
इन फाइट्स के लिए, अपनी बॉडी को रेडी करने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए कोई स्पेशल खाना भी होता है जो खाना चाहिए?
जब फाइट डन होता है और वेट कट चल रहा होता है, तब हमें थोड़ा सा स्ट्रिक्ट बनना पड़ता है, जो कि मेरी फाइट डाइट प्लान है। मेरे भाई मुझे डाइट प्लान बना के देते हैं, शायद वो ज्यादा आपको अच्छी तरह एक्सप्लेन करके बताएंगे। बाकी जो है, उससे जब फाइट नहीं होती है, तो हम लोग थोड़ा सा रिलैक्स होते हैं, और सप्लीमेंट हम डेली यूज करते हैं।
अच्छा उलूमी, राउंड्स के दरमियान में जो ब्रेक आती थी, उसमें
जी,
आप अनीता से बातें कर रहे होते थे, तो आप अनीता से क्या बात करते हैं?
फर्स्ट 30 सेकेंड्स जो होते हैं वो ब्रीदिंग नॉर्मल करने के लिए होते हैं, उसके बाद जो बाकी 30 सेकेंड्स हैं वो यही होता है कि आपके ये चीज काम कर रही है, डू इट दिस वे, और ये चीज काम नहीं कर रही तो आपने ये करना है, अगले ये कर रहे हैं तो आपने जवाब में ये करना है। और अनीता के लिए खैर अभी तक अलहमदुल्ला अभी ऐसी कोई जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन इस फाइट में ये था कि जैसे ही अनिता कॉर्नर में आई, मुझे लगा कि शायद थोड़े बहुत फटीग फील हो रही होगी, थक गई होगी कि इतने पंचेस थ्रो किए हैं, तो जैसे आए तो मैंने पूछा कि हाउ आर वी फीलिंग, तो आगे से जवाब आया कि कहती है कि अभी तो वार्म अप शुरू हो गया है ब्रो। मैंने कहा वेरी गुड, आके बैठ जाओ। फिर मैंने पूछा बाजू मसाज करूँ, कहती है परफेक्टली और राइट, पानी पानी पीना है, थोड़ा बहुत पानी दिया। उसके बाद हम बस एक तरह से गपशप लगा रहे थे कि देखा ना कि नहीं मार सकी तुम्हारी पावर्स ने फील की, तो उसको पता चल गया, और बस नॉर्मल कॉन्वर्सेशन थी। और फिर उठने से 10 सेकंड पहले थोड़ा सा उसको बताया कि क्या करना है, किस तरह से अभी ये राउंड क्या करना है, क्या एक्सपेक्ट करना है इसमें। फिर वही सेकेंड और थर्ड राउंड के बीच में भी वही हुआ, वापस जब आई और पूछा कि मैंने पूछा हाउ आर वी फीलिंग, तो कैसे मुझे गले लगा लिया। फिर मुझे समझ आ गई कि शी इज डूइंग परफेक्ट, तो शी वॉज इन अ वेरी गुड मेंटल स्पेस। फिर उसके बाद जो है दोबारा से मैंने उसको ये पूछा कि थोड़ी बहुत थकान हुई है क्या हुआ, कहती है कि ब्रो अभी तो सिर्फ वार्म अप हुआ है मेरा, अभी वो वार्म अप हो गया, अब तीसरे राउंड में मजा आएगा। फिर उसके बाद हम सब ने देखा कि जिस तरह नीता ने अग्रेसिवली अटैक किया, और जो है शी जस्ट अनलीश्ड एवरीथिंग।
फीमेल्स के साथ भी ट्रेन करती हैं और मेल्स के साथ भी करती हैं, तो दोनों के एक तो फिजिकल स्ट्रेंथ में हमें पता है कि डिफरेंस होता है, आपको टेम्परामेंट में क्या डिफरेंस फील होता है दोनों के?
सेम होती है, हाँ, स्ट्रेंथ डिफरेंट है, लेकिन खेलते तो सेम ही है हम लोग।
आपको आर्म कलेक्टर क्यों कहा जाता है, इसका क्या मतलब है?
ये भी मेरे भाई ने दिया था मुझे। इस्लामाबाद में ब्राजीलियन जुजुत्सु का एक इवेंट हुआ था, उसमें मैंने कंपीट की, और वहां पर जब मैंने जब मेरी फाइट स्टार्ट हुई तो मेरी जो ओपोनेंट थी उसने टेप नहीं किया। इसमें रूल होता है कि अगर आप टेप करते हैं तो हम लोगों को छोड़ते हैं या गिव अप करते हैं। तो मुझे भी नहीं पता चला, मतलब मुझे पता कैसे चलेगा, उसने टेप नहीं किया, उसको ऐसा लगा कि मैं यहाँ से निकल जाऊंगी। तो वहां पर उसका हार्ट टूट गया और उसके साथ एक और लड़की थी, उसकी टीममेट, ऐसा किया कि मैं निकल जाऊंगी। तो उसके चक्कर में उसका भी हाथ वहां पर टूट गया। तो वहां से फिर मुझे मेरे भाई ने नाम दिया आर्म कलेक्टर का।
जब आपने मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग स्टार्ट की, तो लोगों का क्या रद्द अमल था?
जब मैंने मिक्स मार्शल आर्ट स्टार्ट किया तब ये एक उनके लिए नई चीज थी, पूरे पाकिस्तान के लिए एक नई चीज थी कि ये उनको ऐसा लगता था कि ये लड़कों का खेल है, लड़कियों का खेल नहीं है। तो उस चीज में थोड़े से वो कंफ्यूज हो गए कि ये लड़की होके लड़कों वाली खेल खेल रही है, लड़ाई कर रही है, कल को शादी के बाद अपने शोहर को मारेगी, इस तरह की बातें करते थे। तो घर में लड़की को घर में रखो, खाना बनाना सिखाओ, पढ़ाई करवाओ। तो थोड़ी बहुत चीजें सुनने को मिलती है। जब उनको पता चला कि मिक्स मार्शल आर्ट एक्चुअली होता क्या है, लड़कियों के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी पूरे पाकिस्तान से हमें सपोर्ट किया जा रहा है।
फिर आप ही हमें बताएं कि मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स लड़कियों के लिए क्यों जरूरी है?
मिक्स मार्शल आर्ट जब मैंने स्टार्ट नहीं किया था तो मैं भी डरती थी बाहर अकेले जाने से। कोई मसला होता था तो मैं अपने भाइयों को बुलाती थी, अपने पेरेंट्स को बोलती थी कि नहीं बस मैंने नहीं जाना, ऐसा हुआ वैसा। जब मैंने मिक्स मार्शल आर्ट स्टार्ट किया तो मिक्स मार्शल आर्ट ने मुझे ये सिखाया कि उसने मुझे मेंटली और फिजिकली मुझे इतना स्ट्रॉन्ग किया कि अब मैं खुद बाहर जा सकती हूँ, खुद ऐसे सिचुएशन आते तो खुद मैं हैंडल कर सकती हूँ।
आप हमारे सुनने वालों को क्या पैगाम देना चाहेंगी?
जैसे जिस तरह से मुझे मेरे पेरेंट्स ने सपोर्ट किया, मेरे भाइयों ने सपोर्ट किया, मुझे इतना कॉन्फिडेंट बनाया, मेंटली फिजिकली मुझे स्ट्रोंग बनाया, उसी तरह दूसरे जो पेरेंट्स हैं उनको भी चाहिए कि अपनी बेटियों को सपोर्ट करें, अपने बेटों को सपोर्ट करें, अपनी बहनों को आप सपोर्ट करें, ताकि कल को आप अगर उनके साथ ना हो तो ऐसे कोई सिचुएशन आता है तो वो खुद उस चीज को हैंडल कर सके, ना कि उनसे कोई गलती हो या कोई वो गलती कर बैठे।
ऐसे अफराद जो मिक्स मार्शल आर्ट्स में आना चाहते हैं लेकिन उनके पास फैमिली सपोर्ट नहीं होती और वो कमाना भी चाहते हैं, तो क्या एमएमए उनके लिए एक बेहतर प्लेटफॉर्म है?
इसका जवाब शायद भैया जी आपको अच्छी तरह से देगा।
जी ऑफ कोर्स, जब हमने स्टार्ट किया था तो ये एक उस टाइम पे एक ऐसी अनटैप्ड मार्केट थी, सिर्फ मिक्स मार्शल आर्ट्स नहीं फिजिकल फिटनेस एक ऐसी अनटैप्ड मार्केट थी जहाँ पे उसकी नीड भी बहुत ज्यादा थी और मतलब डिमांड भी हाई थी, सप्लाई भी जो है ना बहुत लो थी। जब आप ट्रेड करके सब चीजें सीखते हैं तो आप जो है ना डिफरेंट चीजों में इसको यूज कर सकते हैं, ब्रांच आउट कर सकते हैं इसमें। अगर आप चाहते हैं कि आप एथलीट बने, फुल टाइम एथलीट बने, तो उसमें भी जो है ना पॉसिबिलिटीज होती हैं कि आप जितना ज्यादा फाइट, अच्छी फाइट्स करते जाते हैं, आप जीतते जाते हैं, आपको अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में फाइट करने को मिलता है, तो देर इज अव्यूज चांस कि आपको जो है अच्छा पे मिले। जब आपका नाम बनता है, अच्छा पे आपको मिलना शुरू हो जाता है, लोग आपको जानते हैं, तो उसकी बेस पे आपको स्पॉन्सरशिप भी मिलना शुरू हो जाती है, तो मीन्स कि आपका सोर्स ऑफ अर्निंग जो है वो यही मिक्स मार्शल आर्ट्स ही है, लेकिन जितना आप कमा रहे हैं वो दैट इज वे मोर देन हाउ मच कोई डेस्क जॉब करने वाला शायद मंथली कमा ले।
आप हमारे भाइयों को, वालिदों को और बेटों को कोई पैगाम देना चाहेंगे उनकी बहनों, वाइफ्स और बेटियों से मुतलक?
सबसे पहले तो जब अपनी माओ बहनों बेटियों के साथ आपका रिश्ता अच्छा हो तो आप फिर दूसरों की माओ बहनों बेटियों को जो है ना आप बेहतर समझ सकते हैं। अपनी माओ बहनों बेटियों पूछें, उनसे बात करें कि उनकी लाइफ में ऐसे कोई इंसिडेंट्स हुए हैं जो उन्हें शायद आपको कभी बताया नहीं, किसी के साथ शेयर नहीं किए होंगे, तो आप सरप्राइज होंगे कि कितना कुछ जो है ना ख्वातीन ने दिल में दबा के छुपा के रखा होता है। तो एक दफा जब आपको अंदाजा होता है कि आपकी अपनी बहन या आपकी अपनी बेटी या आपकी अपनी वालदा किस चीज से गुजरी है, तो फिर आप जो है सोसाइटी में दूसरों की बहनों और बेटियों और माओ की जो है हिफाजत का सोच सकते हैं या उनके बारे में आप जो है ना कोई पॉजिटिव सोच सकते हैं। पाकिस्तान में एक मर्द और एक औरत की लाइफ बहुत डिफरेंट होती है, डिफरेंट किस्म के चैलेंजेस होते हैं, जो चैलेंजेस शायद कोई लड़की फेस करे वो कोई लड़का फेस नहीं कर सकेगा, तो इसलिए एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना अपने फैमिली के अंदर, कम्युनिकेशन बहुत जरूरी होती है।
तो ये थी एक खूबसूरत सी मुलाकात पावर डुओ अनीता और उलूमी करीम से।
लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, तबसरा कीजिए, फेसबुक पर SBS उर्दू फॉलो कीजिए।